स्वामी विशुद्धानंद में अलौकिक योग शक्ति थी। जब उनके साथ कविराज जी का संबंध हो गया, तब क्रमशः उनके स्वरूप का परिचय बाहर की दृष्टि से स्पष्ट होने लगा। उनमें योग विभूतियों का तो अंत ही नहीं था। पातंजल योग दर्शन विभूतिपाद में जितनी विभूतियों का वर्णन मिलता है, उससे भी किसी किसी अंश में अधिक शक्तियों, विशेष करके इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया शक्ति का स्फुरन इनके देखने में आया। परमहंस जी के पास दर्शनार्थियों की सदा भीड़ लगी रहती थी। कोई ज्ञानगंज की विभूतियों का वर्णन सुनाने के लिए अनुरोध करता, कोई अपनी मनचाही सुगंधों को सूंघने का। बाबा जी हाथ रगड़कर सुगंध उत्पन्न कर देते थे। कविराज जी कुछ दिनों तक यह सब देखते रहे। एक दिन इनसे नहीं रहा गया, प्रश्न कर बैठे, स्वामी जी, योग की इन सब विभूतियों का अध्यात्म साधना से क्या संबंध है? इसे लेकर हम क्या करेंगे? योग क्या है और उससे किस प्रकार हमारा आत्मिक विकास हो सकता है, यह बताइए। बाबा जी बोले, तुम्हारा शास्त्र योग की क्या परिभाषा देता है? कविराज जी ने निवेदन किया, चित्त वृत्तियों का निरोध, किंतु इसके द्वारा जीवात्मा का परमात्मा से संयोग कैसे स्थापित हो सकता है, यह समझ में नहीं आता। इस संदर्भ में योग की उपाधेयता पर प्रकाश डालिए। स्वामी जी बोले, यह बड़ी दुर्लभ अवस्था है। वह ऐसी स्थिति है जिसे प्राप्त कर मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है। कविराज जी ने कहा, यह हमारी बुद्धि में नहीं आता। क्या योग असंभव को भी संभव कर सकता है? बाबा जी का उत्तर था, योगी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह ईश्वर से अभिन्न है। माया ईश्वर की भांति योगी की भी शक्ति है। जो ईश्वर का आदर्श जितना प्राप्त कर सके, वह उतना ही बड़ा योगी है। जब तक वह माया को नियंत्रित नहीं कर पाता, तब तक साधक रहता है। उसे स्ववश कर लेने पर योगी हो जाता है। यथार्थ उपासक ईश्वर है, उपास्य है महाशक्ति। कविराज जी ने शंका व्यक्त की, क्या ईश्वर और महाशक्ति एक नहीं है? बाबा जी ने एक दृष्टांत देकर इस गूढ़ तत्व को समझाते हुए कहा, आग में लोहे का टुकड़ा डाल दीजिए, एक घंटे में वह तपकर लाल हो जाएगा। इस तप्त लोहे से यदि कपड़े का संपर्क हो जाए तो वह अग्नि के प्रभाव से तत्काल भस्म हो जाएगा, किंतु वही लोहा जब ठंडा हो जाएगा तो यह कार्य नहीं कर सकेगा। यहां लोहा ईश्वर है और अग्नि है महाशक्ति। ये दोनों तत्व नित्य संयुक्त रहते हैं। मनुष्य महाशक्ति रूपी शुद्ध अग्नि तत्व की उपासना नहीं कर सकता, उससे युक्त ईश्वर की कर सकता है। ईश्वर को प्राप्त किए बिना महाशक्ति तक उसकी पहुंच असंभव है। कविराज जी ने आगे प्रश्न किया, बताइए असंभव संभव कैसे हो सकता है? बाबा जी ने बड़े सरल भाव से समझाते हुए कहा, योगी के लिए कुछ भी असंभव नहीं, किंतु ऐसे योगी है कहां जिन्हें आप गेरुआ वस्त्र धारण की मठों में निवास करते हुए देखते हैं, वे साधक मात्र हैं। योगी अत्यंत दुर्लभ है। यह कहते हुए उन्होंने अपने गले में पड़ी हुई माला से एक फूल निकाला और पूछा, कौन फूल है? कविराज जी ने कहा, गुलाब। इनके देखते देखते कुछ ही क्षणों में वह जवापुष्प हो गया, फिर थोड़ी देर बाद कपूर बन गया। बाबा जी बोले, इस गुलाब में ही विश्व ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के उपादान अंतर्निहित हैं। इसे जो चाहो बना लो। सिद्धांत है सर्वम सर्वात्मकम। क में ही ख है। क नाम इसलिए है कि उसमें वही तत्व प्रधान है, शेष अप्रधान है, दबे हुए हैं। देवता में भी पशुत्व रहता है, प्रछन्न रूप में। जगत में योगी प्राय दिखाई नहीं देते, इसलिए इन तथ्यों पर विश्वास नहीं होता। योगी होना अत्यंत कष्टकर है, उनका मुख्य स्थान तिब्बत है। योग की इस व्याख्या से कविराज जी की मूल शंका का पूर्ण समाधान नहीं हुआ। उसे पुनः प्रस्तुत करते हुए ये बोले, इस चमत्कार मूलक योग से जीव का परमार्थिक कल्याण कैसे हो सकता है? बाबा जी ने अपने मंतव्य को स्पष्ट करते हुए कहा, कर्म ही मंथन है, उसी से ज्ञान होता है। चैतन्य रूप ज्ञान से भक्ति, भक्ति से प्रेम और प्रेम से साक्षात्कार, यही अध्यात्म साधना की योगियों द्वारा अनुभूत परिपाटी है। सबके मूल में है कर्म, वह योग साधना का प्रथम सोपान है, मूलाधार है। इसलिए कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम। प्रेम की प्राप्ति योग मार्ग से ही हो सकती है। साधारण प्रेम मनोविकार मात्र है, योगी ही सच्चा प्रेमी है। इस प्रकार सत्संग करते करते संध्या हो गई, पूजा का समय आ गया। वे आसन से उठे, पूजा घर की ओर बढ़ते हुए कविराज जी को अकेले में ले जाकर पूछा, अब तुम्हारा हृदय कैसा है? ये बोले, पहले से अच्छा है। इन्हें आश्चर्य हुआ कि इस बात को तो कभी हमने इनसे कहा नहीं, मेरी उक्त बीमारी से अभिज्ञ कोई ऐसा परिचित व्यक्ति भी नहीं है जो इनके संपर्क में हो, फिर ये कैसे जान गए? बाबा जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कोई चिंता न करो, दीक्षा लेने पर सब ठीक हो जाएगा। परम योगी के इन शब्दों को सुनकर कविराज जी को इनकी कृपा से अपने आदि दैविक के साथ भौतिक कल्याण का विश्वास हो गया। चलते चलते स्वामी जी ने पूछा, कल तो आओगे ही? अवश्य कहकर ये सीढ़ियों से नीचे उतर आए। इस समय ये पिशाच मोचन पर रहते थे। स्वामी जी के दर्शन हेतु वहां से पैदल ही नित्य हनुमान घाट पर आते, उनकी विभूतियों का चमत्कार देखने और सत्संग लाभ करते थे। एक दिन संध्या समय बाबा जी के साथ हरिश्चंद्र घाट होते हुए गंगा के किनारे टहलते टहलते ये 80 घाट तक गए। रास्ते में योग और विज्ञान के संबंध में बहुत बातें हुई। स्वामी जी ने कहा, योग की मुख्य वस्तु प्राकृत नेत्रों से दिखाई नहीं देती, विज्ञान के प्रयोगों का फल प्रत्यक्ष दिखाई देता है। प्राचीन काल में अपने यहां योग विद्या का बहुत प्रचार था, उसी के प्रभाव से यह देश आध्यात्मिक के साथ ही भौतिक उन्नति की भी पराकाष्ठा तक पहुंच गया था। विज्ञान में आज जिस आकर्षण शक्ति को इतना महत्व दिया जा रहा है, उसका मूल सूर्य है। इस रहस्य को जान लेने पर चंद्र, नक्षत्र, वायु, पृथ्वी आदि के विज्ञान करतलगत हो जाते हैं। श्री विशुद्धानंद जी का सूर्य विज्ञान। कविराज जी ने स्वामी जी के सूर्य विज्ञान तथा उसके प्रतिपादन के लिए प्रदर्शित चमत्कारों की चर्चा क्वींस कॉलेज में भौतिकी के प्रोफेसर अभय सान्याल से की। उन्होंने कहा, यह धारणा विवेक शून्य है। बाबा जी विज्ञान से अनभिज्ञ श्रद्धालुओं को ऐसे चमत्कार दिखाकर मुग्ध कर सकती हैं, हम लोग उनके सूर्य विज्ञान के भुलावे में नहीं आ सकते। सूर्य रश्मि से किसी भी स्थिति में ठोस वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बहुत कहने सुनने पर कविराज जी के अनुरोध से वे इनके साथ एक दिन स्वामी जी के आश्रम पर गए। परिचय के बाद उन्होंने बाबा जी से कहा, आप अपने पसंद की ही नहीं, हमारे द्वारा निर्दिष्ट वस्तु यदि सूर्य रश्मि से उत्पन्न कर सके तो हम आपके सिद्धांत की वास्तविकता स्वीकार कर लेंगे। बाबा जी ने कहा, क्या देखना चाहते हो? सान्याल बोले, रेड ग्रेनाइट स्टोन। बाबा जी ने अंगूर के डिब्बे में रखी हुई रुई का एक टुकड़ा मंगाया और उसे कुछ दूर पर रखकर लेंस से प्रकाश देने लगे। वह धीरे धीरे सफेद से लाल रंग में परिवर्तित होकर 2-2.5 मिनट में जमकर काठ की भांति कड़ा हो गया। इसके अनंतर लाल ग्रेनाइट पत्थर बन गया। प्रोफेसर सान्याल ने शंका की, स्वामी जी आप विज्ञान तो जानते नहीं, अपनी योग बल से इसे उत्पन्न कर दिया होगा। चमत्कार दिखाने के थोड़ी देर बाद ही या अदृश्य हो जाएगा। स्वामी जी ने उनकी इस धारणा का खंडन करते हुए कहा, नहीं, यह सूर्य रश्मि के प्रभावों से बना है, ले जाकर अपने पास रखो, जीवन भर देखते रहना, इसमें रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसके बाद बाबा जी ने प्रोफेसर सान्याल के सामने एक फूल उठाया और उसकी प्रत्येक पंखुड़ी से एक एक फूल उत्पन्न कर दिया। फिर उन्हें संबोधित करते हुए बोले, आप भौतिक विज्ञान के बाहरी ढांचे को लेकर बहुमूल्य उपकरणों की सहायता से कुछ तथ्यों को खोजकर अपनी सफलता से गर्वित होते हैं, किंतु यह प्रकृति विज्ञान है। इसकी तथ्यान्वेषण प्रक्रिया बाह्य उपादानों की अपेक्षा नहीं रखती, अधिकारी के समक्ष नियति अपने रहस्य स्वतः खोल देती है। पात्रता प्राप्त कीजिए। कुछ दिनों बाद प्रयाग में कुंभ स्नान का पर्व लगा। बाबा जी के साथ कविराज जी भी गए, जॉर्ज टाउन में ठहरे। प्रोफेसर अंधा सरकार पास ही रहते थे। एक दिन उनसे सूर्य विज्ञान पर बातें हो रही थी। सरकार का विश्वास बाबा जी की स्थापनाओं पर नहीं जम रहा था। बाबा जी ने सामने लगे हुए चीनी खजूर के पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और सरकार से पूछा, यह क्या है? सरकार ने कहा, चीनी खजूर का पत्ता। बाबा जी ने उनके देखते ही देखते लेंस द्वारा सूर्य का प्रकाश देकर उसे पत्थर बना दिया। प्रोफेसर सरकार यह चमत्कार देखकर चकित हो गए। बाबा जी ने कहा, आप लोग वैज्ञानिक पद्धति से वस्तुओं का संश्लेषण और विश्लेषण करते हैं, किंतु उसके पश्चात परिचित वस्तु को उसकी पूर्व स्थिति में नहीं ला सकते। योग के द्वारा यह भी संभव है। योगी को संश्लेषण तथा विश्लेषण दोनों क्रियाएं सिद्ध होती है। आज के विज्ञान और प्राचीन योग विज्ञान में यही अंतर है। ये लोग कुंभ मेले में एक महीने के लगभग ठहरे। बाबा जी के साथ कविराज जी भी नित्य त्रिवेणी स्नान को जाते थे। माघी पूर्णिमा के बाद सभी काशी लौट आए। मैंने ज्ञानगंज के महान साधक श्री विशुद्धानंद जी की जीवनी पर भी ऑडियो बुक बनाया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो उनकी जीवनी सुन सकते हैं। उनसे संबंधित और सूर्य विज्ञान से संबंधित जितने भी वीडियो मैंने अभी तक इस चैनल पर अपलोड किया है, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को अपना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।